नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 8:30 हुए हैं और ये समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं खेल पत्रकार शबाब अनवर। नमस्कार अनवर जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
जी नमस्कार आपको, श्रोताओं को भी।
मुख्य समाचार जान लेते हैं। एशियाई खेलों में पारुल चौधरी ने 5000 मीटर दौड़ में और अनु रानी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। इन स्पर्धाओं में सोने का तमगा हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 10वें दिन भारत ने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य सहित 9 पदक जीते। भारत के पदकों की कुल संख्या 69 हो गई है। तालिका में भारत चौथे स्थान पर। कल भारत को एथलेटिक्स में पदकों की सबसे ज्यादा उम्मीद। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा और किशोर कुमार चुनौती पेश करेंगे। तीरंदाजी, स्क्वाश, बैडमिंटन में भी भारत की दावेदारी रहेगी। और शेष भारत ने ईरानी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता। और अब आपको बताते हैं एशियाई खेलों का आज का दिन कैसा रहा। चीन की हांगचाओ में एशियाई खेलों में आज 10वें दिन भारत ने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य सहित 9 पदक जीते। ब्यौरे के साथ हैं शशांक कुमार।
चीन के हांगचाओ में एशियाई खेलों में आज एथलेटिक्स में महिलाओं की जेवलिन थ्रो में अनु रानी ने सीजन का बेस्ट 62.92 मीटर का थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता।
भारत के नाम एक और गोल्ड आ रहा है। अनु रानी ने दिलाया है गोल्ड भारत को वुमेन्स जेवलिन थ्रो फाइनल में।
5000 मीटर में पारुल चौधरी ने अंतिम समय में जापान की खिलाड़ी को पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया।
That is medal number 64 for India and it's a golden medal, Parul Chaudhary.
ये पारुल का प्रतियोगिता में दूसरा पदक है। उन्होंने 3000 मीटर स्टीपल चेज में रजत पदक भी अपने नाम किया था। पुरुषों के डेक्थलॉन में तेजस्विन शंकर ने रजत पदक जीता।
सिल्वर मेडल तेजस्विन शंकर के नाम मेंस डेकैथलॉन के अंदर।
नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा तेजस्विन शंकर ने।
800 मीटर दौड़ में मोहम्मद अफजल ने भी रजत पदक अपने नाम किया। ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में विंध्या ने कांस्य पदक हासिल किया। मुक्केबाजी में प्रीति और नरेंद्र ने कांस्य पदक हासिल किया। वहीं लवलीना बोरगोहाइन फाइनल में पहुंच गई हैं। इसी के साथ लवलीना और प्रीति ने पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल किया। कैनोइंग डबल में अर्जुन सिंह और सुनील सिंह ने कांस्य पदक जीता था। एशियाई खेलों के इतिहास में कैनोइंग में ये भारत का दूसरा पदक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि पदक विजेता खिलाड़ी लाखों युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करेंगे। तीरंदाजी में पुरुषों के कंपाउंड व्यक्तिगत इवेंट में अभिषेक वर्मा और ओजस प्रवीण ने और महिलाओं में ज्योति सुरेखा वेन्नम ने फाइनल में प्रवेश किया। स्क्वैश में सौरभ घोषाल ने सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बनाई। मिक्स डबल्स में अभय सिंह और अनहद सिंह तथा जोशना चिनप्पा और हरविंदर पाल संधू ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। बैडमिंटन में के श्रीकांत, एचएस प्रणय और पीवी सिंधु ने सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। महिला डबल्स में अश्वनी पोनप्पा और तनीषा तथा त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने भी अंतिम 16 में प्रवेश किया। क्रिकेट में भारत ने नेपाल को 23 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। महिला हॉकी टीम ने हांगकांग को 13-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पदक तालिका में भारत 15 स्वर्ण, 26 रजत और 28 कांस्य पदकों के साथ कुल 69 पदक लेकर चौथे स्थान पर है।
तो आज एशियाई खेलों में भारतीय महिलाओं ने इतिहास रच दिया। चाहे हम 5000 मीटर दौड़ की बात करें पारुल चौधरी की या भाला फेंक में बात करें अनु रानी की।
जी, और दोनों ही का संयोग से जो पूरा कैरियर है बड़ा संघर्षपूर्ण रहा है
जी।
और बहुत ज्यादा खुशी हुई। और पारुल का तो ये दूसरा पदक है स्टेपल चेज 3000 में भी उन्होंने रजत पदक जीता था। और फिर जिस प्रकार से अनु रानी ने समय निकाला 62.92 का, तो ये अपने आप में अविस्मरणीय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गन्ने से भाला बनाकर जिस तरह से वो अभ्यास किया करती थी, उनका अगर इतिहास आप देखेंगे तो काफी संघर्षमय रहा है। उसी प्रकार से अगर हम पारुल चौधरी की बात करें तो पारुल के पिता का ये कहना है, जो अभी हमने देखा, मैं पढ़ रहा था, कि जब वो खेत में काम करते थे तो पारुल उनका भोजन लेकर के आती थी और सरपट पगडंडियों पर दौड़ती थी, यानी उन्हें विश्वास नहीं होता था कि इतने कम समय में खाना कैसे आ जाता है भोजन। तो पगडंडियों पर से दौड़कर यहां पहुंची और दो फायदा उसको सबसे बड़ा मिला। एक तो पहली चीज ये कि शुरू में वो लड़कों के साथ दौड़ती थी तो फिर उनकी बराबरी करने के चक्कर में उसका रेस काफी अच्छा हो जाता था, और दूसरी चीज ये थी कि उसकी बड़ी बहन राष्ट्रीय स्तर की धावक थी तो उससे प्रेरणा मिली। और आज देखिए, आज का दिन जो रहा है महिलाओं के नाम निश्चित रूप से रहा है, दोनों महिला एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन किया भारत के लिए।
और खासकर जब पारुल का मैं देख रही थी, जब उनकी दौड़ तो मतलब लास्ट मोमेंट पे लगभग 30 मीटर में उन्होंने कमाल कर दिया, जापान के ओपोनेंट को हरा दिया।
या बिल्कुल 30 सेकंड के अंदर अगर देखा जाए तो सब कुछ बदल गया, और यही दौड़ की खासियत होती है कि अगर आप दौड़ में हैं तो आपको अपने स्टेमिना बचा के रखनी है ताकि दूसरे जो आपके ओपोनेंट हैं वे समझे कि शायद आप थक गए। ये एक रणनीति थी उनकी और तैयारी पूरी थी गोल्ड पर निशाना लगाने की।
और अगर मोहम्मद अफजल की भी बात करें 800 मीटर दौड़ में, तो शुरुआत से अच्छा कर रहे थे पर आखिर में कुछ मीटर में सऊदी अरब के बीच से
वहां पर वो स्टेमिना में मात खाए निश्चित रूप से, और यही जब फिनिशिंग प्वाइंट के पास पहुंचने से पहले ही दमखम का की परीक्षा होती है।
और इस दौड़ में कृष्ण कुमार भी थे साथ में, जो पांचवें स्थान पर उनको संतोष करना पड़ा। इसके अलावा अगर हम बात करें डेकेथलन की, तेजस्विन शंकर ने आज रजत पदक जीता उसमें, तो 1974 के बाद अब इस स्पर्धा में हमने पदक जीता है।
यह बिल्कुल काफी बड़ा सूखा था जिसे उन्होंने समाप्त किया है, और मैं लगातार देख रहा हूं, आप भी देख रहे होंगे प्रियंका जी, कि जिन खेलों में काफी लंबा गैप आ गया था भारत ने वापसी की है शानदार तरीके से, उसमें एक डेकेथलन भी है, तो ये एक अच्छी बात है। और जिस तरह के युवा खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसमें अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा कि खेलो इंडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब से खेलो इंडिया की शुरुआत हुई है पिछले कुछ वर्षों से, कई युवा खिलाड़ी खेलो इंडिया से निकलकर राष्ट्रीय टीम के सदस्य बने, और इस समय पदक जीतने वालों में कम से कम मेरे हिसाब से 15% तो खेलो इंडिया के ऐसे लड़के हैं जो वहीं से निकले हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गए, एशियन गेम्स में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो एक शुरुआत जो एक मोमेंटम जो मिला है खेलो इंडिया से, जो कि पहली बार भारत में आयोजित हो रहा है, तो उससे काफी फायदा मिला है। और ये नारा कि खेलो इंडिया जीतेंगे हम, प्रधानमंत्री जी का, और प्रधानमंत्री जी ने अभी भी आह्वान किया है कि इसकी बार 100 के पार, तो इसका मतलब है कि हम उसके बहुत करीब पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए कल का दिन जो होगा ऐतिहासिक, ऐसे भी हो जाएगा चूंकि 70 था जकार्ता में, 69 पहुंच चुके हैं। और रजत पदक में तो हम रिकॉर्ड जकार्ता का तोड़ चुके हैं क्योंकि 24 का रिकॉर्ड था, 26 हो चुका है, तो कल जब 70 के पार हम पहुंचेंगे, और देखिए जितने पदक आज भारत के पास आए हैं उससे कहीं ज्यादा पदक, जैसा कि आपने भी बताया अभी, भारत ने कल के लिए पक्के कर लिए हैं, कल या फिर उसके बाद के लिए, तो अभी बहुत सारे पदक आने वाले हैं। इसी तरह से अगर देखा जाए तो पहली बार क्रिकेट में, जाहिर से इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, भारत भाग ले रहा है, महिला टीम स्वर्ण पदक
सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, भारत और महिला टीम भी,
कुछ टीमों को सीधे बाई मिला था क्वार्टर फाइनल में। शानदार प्रदर्शन, यशस्वी जायसवाल की यहां पर प्रशंसा करनी होगी, जिस तरह का उन्होंने शतक लगाया शानदार तरीके से, फिर रिंकू सिंह जो कि एक अच्छे फिनिशर के तौर पर जाने जाते हैं, आज डेथ ओवर में शानदार बल्लेबाजी की। और यशस्वी जायसवाल को जो भी प्लेटफॉर्म मिला है, चाहे वो टेस्ट हो, डीआई हो, या फिर T20I या फिर एशियन गेम्स, कम उम्र में लगातार रिकॉर्ड बनाने का ये की तिकड़ी जो उन्होंने बनाई है वो शानदार है।
बिल्कुल, अगर महिला हॉकी की बात करें तो आज उसने भी शानदार प्रदर्शन रहा, हांगकांग को 13-0 से हरा दिया उसने।
और उसकी सबसे बड़ी चीज जो आपने गौर की होगी, जो पुरुष हॉकी में काफी सुधार इस मामले में आया है, भारतीय हॉकी के दोनों वर्गों में हमेशा ये शिकायत ये रहती थी कि पेनल्टी कॉर्नर को हम गोल में कन्वर्ट नहीं कर पाते, लेकिन इस बार तो गजब का कन्वर्जन हो रहा है, चाहे वो पुरुष टीम हो या महिला टीम हो, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर टीम प्रदर्शन की अगर बात करें तो अभी तक सबसे शानदार प्रदर्शन हमारे राष्ट्रीय खेल से जुड़े हुए खिलाड़ियों का रहा है, हॉकी का शानदार।
पेनल्टी में मतलब उसको बदलना गोल में, अब पिछले कुछ अगर गेम्स देखे तो उसमें काफी सुधार आ गया,
बिल्कुल बहुत ज्यादा।
और अगर कैनोइंग की बात करें तो आज उसमें भी इतिहास रची एक तरह से, क्योंकि इसके भारत को आज एशियन गेम्स के इतिहास में दूसरा पदक मिला, इससे पहले 1994 में मिला था, और आज अर्जुन सिंह और सुनील सिंह की जोड़ी।
डोंगा का मुकाबला होता है, एक बहुत ही दिलचस्प रेस होती है जिसमें एक मरतबा फिर भारत ने लंबे समय के बाद पदक जीता, उनको भी बधाई, शुरुआत तो उन्हीं से हुई थी,
आज पहला पदक हमने उसी में जीता था। और अगर बात करें तो मुक्केबाजी में ब्रॉन्ज से संतोष करना पड़ा हमें, लास्ट मोमेंट पे थोड़ी सी चूक हो गई, वरना उसमें भी हम आगे बढ़ जाते।
एशियन गेम्स का ऐसे नियम भी है कि सेमीफाइनल में हारने वाली खिलाड़ी को
ब्रॉन्ज, दोनों टीम्स को ब्रॉन्ज जी,
तो वो उस हिसाब से मिला है। हालांकि उम्मीद तो ज्यादा की थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका।
और आज हमारा उसमें बैडमिंटन में भी अच्छा प्रदर्शन रहा, आगे हम बढ़ गए हैं। स्क्वाश की बात करें, उसमें भी सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। तीरंदाजी में भी पिछले अगर कुछ देखा जाए तो तीरंदाजी में चाहे कंपाउंड हो, रिकर्व हो, हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।
एक बात मैं कहना चाहूंगा कि खास करके स्क्वाश के बारे में जिस तरह का प्रदर्शन भारत कर रहा है दोनों वर्गों में, उस तरह का एक्सपोजर हमारे स्पोर्ट्स मीडिया में इन खेलों को मिलता नहीं है। उसके बावजूद आप देख लें कि गुमनामी में रह करके कितनी शानदार तैयारी भारत ने की है। हालांकि ये एशियन उपमहाद्वीप की बात अगर करें तो वहां काफी ज्यादा भारत और पाकिस्तान में ये खेल प्रचलित है, लेकिन जो जिस तरह का एक्सपोजर मिलना चाहिए इनके खिलाड़ियों को वो नहीं मिल पाता है। हम उम्मीद करते हैं कि अब स्क्वाश के खिलाड़ी का भी काफी नाम होगा, चूंकि वर्ल्ड रैंकिंग की अगर बात करें तो उनको तो सबको मालूम है, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो बहुत ही गुमनामी में रहकर अपने को तैयार किया और जब मौका मिला तो एशियन गेम्स के स्टेज पर शानदार प्रदर्शन किया।
बिल्कुल ऐसे ही उम्मीद हम कल भी चाहेंगे कि हमारे खिलाड़ी दिखाएं। कल 11वें दिन भारत को एथलेटिक्स में पदकों की सबसे ज्यादा उम्मीदें रहेंगी, सबकी निगाहें पुरुषों के भाला फेंक में ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा तथा किशोर कुमार पर रहेंगी। इसके अलावा पुरुषों और महिलाओं की 4x400 मीटर रिले टीम स्वर्ण पदक की बड़े दावेदारी रहेगी। पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह और अविनाश सालवे ट्रैक पर उतरेंगे। महिलाओं की 800 मीटर दौड़ में हरमिलन बैंस और चंदा चुनौती पेश करेंगी। पुरुषों के ऊंची कूद में संदेश और अनिल सर्वेश मैदान में उतरेंगे। महिलाओं की ट्रिपल जंप में वर्के नलिक्कल खेलेंगी। 35 किलोमीटर रेस वॉक मिक्स टीम में राम बाबू और रानी मंजू की जोड़ी मैदान पर होंगी। तीरंदाजी में कंपाउंड और रिकर्व मिक्स टीम क्वार्टर फाइनल में खेलेंगी। स्क्वाश में सौरभ घोषाल सिंगल्स के और दो मिक्स डबल्स जोड़ियां सेमीफाइनल में खेलेंगी। बैडमिंटन में पीवी सिंधु, एचएस प्रणॉय, के श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। तो ये तो कल का है और खासकर जो मुख्य आकर्षण का केंद्र वो नीरज चोपड़ा ही कल रहने वाले हैं।
नीरज चोपड़ा से बार बार पूछा जा रहा है कि आप अपना बेस्ट करेंगे अब तक, तो उनका कहना है कि मैं बेस्ट के बारे में नहीं सोच रहा हूं, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि स्वर्ण पर मैं अपने भारत के लिए जीतूं, अगर उसमें बेस्ट हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेन जीत है कि आपका अपोनेंट कितना कमजोर या मजबूत है इस पर निर्भर करता है। लेकिन नीरज चोपड़ा का जो प्रदर्शन रहा है उससे तो पूरी उम्मीद है कि वो स्वर्ण पर ही निशाना लगाएंगे। और कुल मिलाकर मेरा ये मानना है कि अगर भारत चौथे नंबर पर फिनिश करता है, जिसकी पूरी संभावना है, तो फिर भारत एशियाई खेल का की एक महाशक्ति के रूप में निश्चित रूप से जाना जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर अगर देख लें जो दो टीमें हैं, तीन देश हैं, जापान, कोरिया और फिर मेजबान चीन, तो वो काफी बड़ा अंतर है और पूरी तरह से उनका आधिपत्य रहा है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से 8वें से 4थे स्थान पर भारत पहुंचा है और वहां पर निरंतरता के साथ अपने को बरकरार रखे हुआ है, ये बड़ी बात है। चौथा फिनिश अगर होता है फोर्थ पोजीशन पर, जिसकी पूरी गुंजाइश है, तो फिर भारत एशियाई खेल महाशक्ति तो निश्चित बनेगा।
चलिए, इसमें भी अपना दमखम दिखा रहा है भारत खेल में। और आगे भी बढ़ते हैं, ईरानी कप की बात करते हैं। तो शेष भारत ने ईरानी कप क्रिकेट टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। राजकोट में मैच के आज तीसरे दिन शेष भारत ने सौराष्ट्र को 175 रन से हरा दिया। शेष भारत ने पहली पारी में 94 रन की बढ़त लेने के बाद दूसरी पारी में 160 रन बनाकर सौराष्ट्र के सामने जीत के लिए 255 रन का लक्ष्य रखा। सौराष्ट्र की टीम 34 ओवर और 3 गेंद में ही 79 रन पर सिमट गई, जो ईरानी कप में न्यूनतम स्कोर है। आज तो बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा।
गेंदबाजों ने खास करके काफी अच्छा प्रदर्शन किया और जीत में मुख्य भूमिका निभाई। हालांकि उतार चढ़ाव वाला, धूप छांव वाला खेल रहा, कभी बल्लेबाजी हावी रही, कभी गेंदबाजी।
और विश्व कप क्रिकेट से पहले आज तिरुवनंतपुरम में भारत और नीदरलैंड्स के बीच अभ्यास मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। भारत का इंग्लैंड के साथ पहला अभ्यास मैच भी बारिश की भेंट चढ़ गया था। इसके अलावा हैदराबाद में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान तथा गुवाहाटी में अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच मुकाबला जारी है। विश्व कप में भारत अपना पहला मैच 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। और अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को जारी रखें। शबाब अनवर जी, आप स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर चर्चा की, इसके लिए बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद आपका।
श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। कल शाम 8:30 बजे दोबारा मुलाकात होगी। इसके साथ ही प्रियंका अरोड़ा और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।